संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 22 मार्च 2024 के बुलेटिन की सुर्खियां। गाजा में युद्ध के कारण उत्तरी इलाके में भुखमरी के हालात, यूएन टीमों ने जताया गहरा क्षोभ। युद्ध विराम की जरूरत बताने वाला एक अमेरिकी प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में नाकाम। यूक्रेन में बिजली संयंत्रों पर रूसी हमलों की कड़ी निंदा, 15 लाख लोगों की बिजली आपूर्ति ठप। म्यांमार में सैन्य बलों द्वारा आम नागरिकों के साथ की जा रही क्रूरताओं को रोके जाने की पुकार। और सुनिएगा एक विशेष बातचीत, लैंगिक समानता और महिला मजबूती विषय पर कांता सिंह के साथ, जो कि भारत में यूएन वुमेन की उप अध्यक्ष हैं। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर अवश्य आएं। पता है news.un.org/hi। मोबाइल डिवाइसेस पर भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है यूएन न्यूज। अब समाचार विस्तार से। काबिज फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पट्टी में जारी इसराइली बमबारी के बीच संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कर्मियों ने क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा है कि उत्तरी हिस्से में स्तब्ध कर देने वाले स्तर पर बीमारियां और भुखमरी फैली हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता टीम ने प्रभावित इलाके में एक अस्पताल का दौरा करने के बाद वहां जल्द से जल्द मानवीय राहत पहुंचाए जाने की अपील की है, ताकि अकाल की आशंका को टाला जा सके। इस बीच गाजा में तत्काल युद्ध विराम की जरूरत बताने वाले एक अमेरिकी प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद में रूस और चीन ने वीटो कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
शुक्रवार को पेश किए गए इस प्रस्ताव में गाजा में आम लोगों को सुरक्षा और मानवीय सहायता मुहैया कराने के लिए तत्काल और टिकाऊ युद्ध विराम पर बल दिया गया था। प्रस्ताव में युद्ध को समाप्त करने और बंधकों की रिहाई को संभव बनाने के लिए इसराइल और हमास के बीच चल रही बातचीत को भी समर्थन देने की बात कही गई थी। सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव पर रूस और चीन ने अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं काबिज फलस्तीनी इलाके के लिए यूएन के शीर्ष सहायता अधिकारी जेमी मैकगोल्ड्रिक ने गुरुवार को उत्तरी गाजा के कमाल अदवान अस्पताल का दौरा किया, जहां एक स्वास्थ्य केंद्र में गंभीर भूख संकट से जूझ रहे बच्चों का उपचार किया जा रहा है। यूएन मानवतावादी टीम का कहना है कि यहां स्तब्ध कर देने वाले स्तर पर भूख और बीमारी ने अपने पांव पसारे हुए हैं और उपचार के अभाव में बच्चों पर मौत का जोखिम मंडरा रहा है। उधर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने ब्रसेल्स में यूरोपीय परिषद के सत्र को संबोधित करते हुए गाजा पट्टी और यूक्रेन में युद्ध विराम पर बल दिया।
When we live in a chaotic world, it's very important to stick to principles. And the principles are clear. The United Nations Charter, international law, territorial integrity of countries, international humanitarian law.
महासचिव गुटेरेश कह रहे थे कि जब हम एक अस्त व्यस्त दुनिया में रहते हैं तो सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है, और सिद्धांत स्पष्ट हैं। यूएन चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून, देशों की क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून। उन्होंने कहा कि इसी वजह से हमारा मानना है कि यूक्रेन में शांति स्थापित करना अनिवार्य है, और इसी कारण से गाजा में भी एक युद्ध विराम की आवश्यकता है। गाजा में जारी लड़ाई के बीच हालात खराब है। वहां खाद्य असुरक्षा पर एक यूएन समर्थित विश्लेषण में चेतावनी दी गई है कि इस समय लगभग 11 लाख लोग खाद्य संकट और भुखमरी से आपदा के स्तर पर पीड़ित हैं, और उत्तरी गाजा में अब से लेकर मई महीने तक कभी भी अकाल पड़ सकता है। यूएन मानवीय सहायता कर्मियों के अनुसार भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके उत्तरी गाजा में मार्च महीने में संयुक्त राष्ट्र के आधे से भी कम सहायता मिशन को इसराइल की अनुमति मिल पाई।
संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न एजेंसियों ने शुक्रवार को यूक्रेन में ऊर्जा संयंत्रों पर रूस के समन्वित हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में कम से कम 5 लोग मारे गए और अनेक शहरों में लगभग 15 लाख लोगों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने मिसाइलों और ड्रोन के जरिए किए गए इन हमलों की भर्त्सना की है। उनके प्रवक्ता फरहान हक ने यूएन मुख्यालय में कहा कि आम लोगों व सिविल बुनियादी ढांचे को इस तरह हमलों का निशाना बनाया जाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और अस्वीकार्य है। इससे पहले बुधवार को यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क की एक रिपोर्ट में कहा गया कि रूसी महासंघ ने यूक्रेन में अपने नियंत्रण वाले इलाकों में भय का एक माहौल पैदा कर दिया है। उन इलाकों में स्थानीय आबादी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए व्यापक पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी और मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के एक नए विश्लेषण में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के मुख्य संकेतकों यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, पृथ्वी की सतह के तापमान, महासागर ताप व अम्लीकरण, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, जमे हुए जल की घटती चादर व खिसकते हिमनद, इन सभी ने फिर से नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। एक रिपोर्ट के साथ सचिन गौड़।
यूएन मौसम विज्ञान एजेंसी ने इस सप्ताह वैश्विक जलवायु की स्थिति को बयां करती हुई अपनी नई रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट ताप, लहरों, बाढ़, सूखे, जंगलों में आग और चक्रवाती तूफान की घटनाओं से करोड़ों लोगों पर होने वाले असर और अरबों डॉलर की आर्थिक क्षति पर केंद्रित है। इसमें पुष्टि की गई है कि 2023 अब तक का सर्वाधिक गर्म साल था और पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में औसत तापमान 1.45 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके अलावा पिछले 10 साल रिकॉर्ड पर अब तक की सबसे गर्म अवधि साबित हुए हैं। यूएन विशेषज्ञों ने ध्यान दिलाया है कि जलवायु परिवर्तन केवल वायु तापमान तक ही सीमित नहीं है, महासागरों के तापमान और समुद्री जल स्तर में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। ग्लेशियर का आकार खिसक रहा है और अंटार्कटिक क्षेत्र में जमे हुए जल की मात्रा में कमी आ रही है।
म्यांमार में मानवाधिकार स्थिति पर स्वतंत्र विशेषज्ञ टॉम एंड्रयूज ने सैन्य बलों द्वारा देश के आम नागरिकों के साथ की जा रही क्रूरताओं को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समन्वित ढंग से ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। कुछ और जानकारी सुनिए अंशु शर्मा से।
म्यांमार की सेना ने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को फरवरी 2021 में सत्ता से बेदखल कर दिया था और राष्ट्रपति विन मिंत, स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची समेत सैकड़ों अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद देश भर में सैन्य बलों और अलगाववादी व विरोधी गुटों के बीच सशस्त्र टकराव संघर्ष में तेजी आई। ताबड़तोड़ ढंग से हवाई कार्रवाई किए जाने समेत अनेक हिंसक घटनाओं में आम लोग मारे गए हैं। बताया गया है कि हिरासत में रखे गए बंदियों की सामूहिक हत्याएं हुई हैं और बलात्कार किए जाने और जानबूझकर पूरे गांव को जला देने की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया है। म्यांमार के लिए विशेष रिपोर्टर टॉम एंड्रयूज ने मानवाधिकार परिषद के सदस्य देशों को बताया कि पिछले 5 महीनों के दौरान आम नागरिकों पर हवाई हमले किए जाने की घटनाओं में 5 गुना वृद्धि हुई है। मानवाधिकार विशेषज्ञ टॉम एंड्रयूज ने कहा कि सैन्य नेतृत्व ने अब जबरन सैनिकों की भर्ती करने का कार्यक्रम शुरू किया है और कभी कभी युवाओं को सड़कों से अगवा किया जा रहा है। मौजूदा घटनाक्रम से सर्वाधिक प्रभावितों में अल्पसंख्यक मुसलमान रोहिंग्या समुदाय भी है, जिस पर हमले व उनका उत्पीड़न जारी है।
महिलाओं की स्थिति पर आयोग यानी CSW की वार्षिक 68वीं बैठक यूएन मुख्यालय में बीते 2 सप्ताहों के दौरान आयोजित हुई, जिसमें दुनिया भर से महिला मजबूती और लैंगिक समानता के पैरोकारों ने शिरकत की। भारत में यूएन वुमेन की उप अध्यक्ष कांता सिंह भी इस मौके पर यूएन मुख्यालय में मौजूद थीं। हमने उनसे बात की और जानना चाहा कि उनका अनुभव कैसा रहा और भारत में इस क्षेत्र में हो रही प्रगति का स्तर क्या है।
देखिए, कुल मिला के मुझे लगता है दुनिया के सभी देशों में एक जागरूकता है, एक कमिटमेंट है कि महिलाओं के लिए कुछ करना है। इंडिया की जब बात होती है तो मुझे लगता है दुनिया के सारे देश इंडिया की तरफ देख रहे हैं। ना सिर्फ इसलिए कि इंडिया एक उभरता हुआ एक इकोनॉमी है, बल्कि वहाँ बहुत सारे संख्या में महिलाएँ हैं, तो वहाँ अगर अचीवमेंट कुछ होती है तो वो दुनिया के सारे SDGs के अचीवमेंट पर फ़र्क पड़ता है।
समाज के स्तर पर जो स्टीरियोटाइप्स हैं महिलाओं को लेके, तो उनको तोड़ने में किस तरह की मुश्किलें हो रही हैं या किस तरह का माहौल है?
देश में आज के दिन एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे महिलाएं नहीं हैं। फाइटर पायलट एक आखिरी जो एक मुकाम बचा था, आई थिंक वहाँ पे भी भारत की महिलाएं अच्छा कर रही हैं। अपने साइंटिस्ट साहब देखिए, जितने भी इसरो के अपने मिशंस हैं महिलाएँ लीड कर रही हैं उनको। लेकिन ऐसा कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये नहीं है कि सब कुछ सॉल्व हो गया है, लेकिन अभी सीखने की जो तरक्की करने की जो दिशा है और जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
भारत में यूएन वुमेन की उपाध्यक्ष कांता सिंह के साथ इस बातचीत का विस्तृत संस्करण हमारी वेबसाइट पर सुना जा सकता है। पता है news.un.org/hi। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति।